भागवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय पर चर्चा है। इसके एक महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं। वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं। वासुदेवे कृष्ण के प्रति, भगवती भगवान, भक्ति योग भक्ति प्रयोजितः की गई, जनयति उत्पन्न करती है, आशु तुरंत, वैराग्यं विरक्ति ज्ञानं ज्ञान, यद जो ब्रह्मदर्शनम आत्म साक्षात्कार। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तात्पर्य, अल्पज्ञ कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में अग्रसर नहीं हो पाए हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो समग्र कृष्ण चेतना से भक्ति में लगा रहता है उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है और न दिव्य ज्ञान जागृत होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा है उसमें स्वतः देवताओं के गुण आ जाते हैं। कोई ये नहीं खोज कर सकता कि ये गुण भक्तों में कैसे आते हैं, किंतु होता यही है। ऐसा एक उदाहरण है, एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त हो जाने पर वह एक चींटी भी मारने को तैयार न था। ऐसा होता है भक्त का गुण। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाएं। परम सत्य विषय ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इस श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार है तो दर्शनम अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शनम तो भगवान वासुदेव के देखने को बताता है। जब तक देखने वाला तथा देखा जाने वाला व्यक्ति ना हो तब तक दर्शनम नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शनम का अर्थ है ज्यों ही मनुष्य भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी होती है, ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त तुरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वशास्त्राद्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरु मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तु ते। असाधु साधु तदाई अति नीचोच तह कर हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंठयो सुरा। हरे कृष्ण। कल के अध्याय में चर्चा हुई कि कैसे फिर से जीव इस भौतिक जगत में आता है, कैसे वो शरीर धारण करता है, माँ के गर्भ में कितना उसको कष्ट होता है, उन कष्टों को सहते हुए फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान को वचन देता है कि बस एक बार बाहर निकाल दीजिए फिर नहीं आऊँगा, लेकिन फिर जब जन्म लेता है भूल जाता है, फिर वही पाप करता है, फिर वही जीवन, और फिर से उसी पथ पर जाता है जहाँ से वापस आया है। तो ऐसे ये वर्णन करने के बाद कि कैसे व्यक्ति फंसता है अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं भगवान कपिल, और इस अध्याय में प्रमुखतः भक्ति का गुणगान करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले वो बताते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा भौतिकता में पड़े हैं, भौतिकवादी हैं, केवल आनंद लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है। फिर वो वर्णन करते हैं जो भगवान के विश्व रूप का पूजा करते हैं उनकी क्या गति होती है, और फिर वो वर्णन करते हैं भक्ति का। तो ऐसे इस अध्याय में वो दोनों तरह के कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की निंदा भी कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सकाम कर्मों में फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ भक्ति का गुणगान भी वो करने वाले हैं। तो पहले 7 श्लोकों में वो सकाम कर्म करने वालों की निंदा करते हैं कि वे लोग कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और मुक्ति को प्राप्त करना है तो निष्काम कर्म होना चाहिए। तो इसका वर्णन वो करते हैं, प्रारंभ करते हैं पहले ही श्लोक में वो वर्णन करना कि कैसे एक व्यक्ति अपने घर में बहुत आसक्त होता है और घर को ही सब कुछ मानता है। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं 2 प्रकार के लोग, एक गृहस्थ और एक गृहमेधी। गृहमेधी मतलब जिसका उद्देश्य केवल परिवार में रहकर आनंद को प्राप्त करना है, भोग करना है, बस वो इसीलिए परिवार में बना है, इसीलिए परिवार का पालन पोषण कर रहा है कि जिसके द्वारा वो भोग कर सके, आनंद ले सके, उसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो गृहस्थ है, वो भी परिवार का पालन करता है, वो भी पोषण करता है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। वो आसक्त नहीं है अपने परिवार से, अपनी पत्नी, अपनी संतान से। तो गृहस्थ और गृहमेधी में अंतर इतना ही है, 2 चीजों का अंतर है, एक भाव का और दूसरा उद्देश्य का। गृहमेधी जीवन में भाव क्या है? भोग का। उद्देश्य क्या है? आनंद प्राप्त करना परिवार में बने रहकर। और गृहमेधी, ये गृहस्थ जीवन का भाव क्या है? अनासक्ति। और उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता या कृष्ण की प्राप्ति। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो संन्यास ब्रह्मचर्य जीवन को स्वीकार नहीं करते, वो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी उनका उद्देश्य इतना ही होता है कि वो भगवान की प्राप्ति कर सकें, इसीलिए वो आसक्त नहीं होते। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, गृहस्थ और गृहमेधी भक्त में अंतर। अंतर बस भाव का है और उद्देश्य का। कार्य वही है, एक गृहमेधी भी विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, अपने पक्षों से प्रेम करता है, पत्नी से, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उनको करता है। तो वो गृहमेधी और गृहस्थ दोनों ये कार्य करते हैं, लेकिन अंतर इतना ही है कि गृहमेधी आसक्त हो जाता है, उसको लगता है कि बस यही जीवन है, सारे शास्त्रों में यही वर्णन है किस तरह से अच्छे जीवन से अच्छे परिवार को चलाएं। लेकिन जो गृहस्थ भक्त है, जो गृहमेधी नहीं है, वो ये जानता है कि भगवान की योजना से मुझे एक परिवार चलाने की जिम्मेदारी मिली है, मैं अच्छी तरह से परिवार चलाऊं ताकि मैं और मेरा पूरा परिवार भगवान का स्मरण कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए ये 2 अंतर होते हैं, गृहमेधी और गृहस्थ जीवन के, भाव का अंतर और उद्देश्य का अंतर। और यही दोनों चीजें किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा बनाती हैं। कार्य हम जब करते हैं, जैसे कोई भक्त होता है वो भी कार्य करता है, और इसी प्रकार जो ऐसा व्यक्ति भगवान से विमुख है वो भी कार्य करता है, लेकिन उन दोनों के कार्यों में अंतर क्या है? यही 2 चीजों, भाव और उद्देश्य। एक व्यक्ति कार्य करता है अपने आप को कर्ता मानते हुए, अपने आप को भोक्ता मानते हुए, अपने आप को नियंत्रक मानते हुए। दूसरी ओर भक्त भी कार्य करता है लेकिन वो अपने आप को भोक्ता नहीं मानता, नियंत्रक नहीं मानता। उसका भाव है कि भगवान भोक्ता हैं, भगवान नियंत्रक हैं। इसीलिए भोग करने के भाव से वो उद्देश्य से कार्य नहीं करता, तो उद्देश्य तो भाव गलत हो जाता है। दूसरी ओर उद्देश्य, जो व्यक्ति अपने को कर्ता मानते हुए, अपने को भोक्ता मानते हुए कार्य करता है, उसका उद्देश्य क्या है? किसी न किसी तरह इसी भौतिक जगत में आनंद की प्राप्ति। और दूसरी ओर एक भक्त है जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, भोक्ता नहीं मानता, अपने लिए कार्य नहीं करता, उसका उद्देश्य क्या है जीवन में? उसका उद्देश्य है श्री कृष्ण का आनंद। तो एक तरफ अपने आनंद के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति है, दूसरी तरफ कृष्ण के आनंद के लिए। कार्य वही है, कार्यों में अंतर नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति को भगवान भगवद गीता में असुर कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आसुरी स्वभाव वाला है। ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये आसुरी भाव भगवान ने कहा। लेकिन दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने भगवान के लिए कार्य किया, वही कार्य लेकिन उसका भाव अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, वो महात्मा कहलाया। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रितः। तो दैवी प्रकृति का आश्रय लेने का अर्थ क्या है? अपने भाव और उद्देश्य को बदल देना, बस इतना ही है। कार्य को, स्थान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। स्थाने स्थित श्रुति गतांत अनुवाकमनो भी, भागवत कहता है स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बदलना है? भाव और उद्देश्य। तो अगर व्यक्ति दुरात्मा है, दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दुरात्मा या महात्मा। तो महात्मा कौन है? दैवी प्रकृति माश्रितः। तो दैवी प्रकृति का आश्रय का अर्थ क्या है? भाव और उद्देश्य में परिवर्तन। बस अगर हमारे भाव में, अर्थात हम इस जगत से अनासक्ति के भाव को उत्पन्न करें और हमारा उद्देश्य वो अनासक्ति को उत्पन्न करना कोई भोग ना हो किंतु परंतु कृष्ण की प्रसन्नता हो, वो सही उद्देश्य, वो व्यक्ति को महात्मा मनाता है। तो दुरात्मा और महात्मा में अंतर है भाव का और उद्देश्य का। दुरात्मा का उद्देश्य है अपना आनंद, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, और महात्मा का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो इसी तरह ग्रह मेधी और गृहस्थ भक्त के, गृहस्थ के जीवन के अंतर को प्रभुपाद तात्पर्य में पहले श्लोक के समझाते हैं कि ग्रह मेधी और गृहस्थ में अंतर भाव और उद्देश्य का है। इसीलिए हर भक्त को अपने अपने परिवार में रहते हुए इस भाव और उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। घर में रहें, गृहस्थ भक्त घर में रहें, कार्य करें, धनार्जन करें, परिवार का पालन पोषण करें, लेकिन भाव अनासक्ति का हो, भाव कभी भोग की प्रवृत्ति का ना हो, और उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता, तब वो सही जीवन, सही दृष्टि से आश्रम कहलाएगा। गृहस्थ आश्रम, जब हम आश्रम कहते हैं तो आश्रम का भाव क्या है? हर आश्रम का भाव यही है अनासक्ति, और हर आश्रम का उद्देश्य यही है कृष्ण की प्रसन्नता। ब्रह्मचारी अपने अपने परिवार को छोड़कर भगवान के मंदिर में, भगवान के आश्रय में आकर रहते हैं, क्या उद्देश्य, क्या उनका भाव होना चाहिए? अनासक्ति। अगर उसमें भी वो आसक्त हैं तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। इसी प्रकार गृहस्थ को भी अनासक्त होना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए भी अनासक्ति कही गई है। वानप्रस्थ को थोड़े समय घर में रहना चाहिए और थोड़े समय बाहर, अनासक्ति को उत्पन्न करने के लिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि एक व्यक्ति को जो वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहता है तैयारी करनी चाहिए, एक दो महीना घर में रहे फिर एक दो महीने के लिए बाहर चले जाना चाहिए, कहीं अच्छे भगवान के धाम इत्यादि में चले जाना चाहिए, फिर वापस आकर थोड़े समय रहे फिर चला जाए। इससे धीरे धीरे अनासक्ति होगी, नहीं तो केवल बाहरी दृष्टि से दिखाने के लिए अनासक्ति होगी, हृदय आसक्त रहेगा परिवार में, संतानों में, संतान की संतानों में, कभी यह आसक्ति छूटेगी ही नहीं। इसीलिए अनासक्ति को उत्पन्न करने के लिए दो महीना तीन महीना बाहर रहना चाहिए, फिर थोड़े समय के लिए आए फिर बाहर जाए, और जब तैयार हो जाए कि हाँ अब मैं रह सकता हूं तो पूर्ण रूप से घर को त्याग दे, फिर कभी वापस नहीं जाए घर में, मुड़े नहीं घर की ओर। क्योंकि जब तक वो घर में रहेगा उसके अंदर ये भाव बना रहेगा कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे अभी करना है। देखिए व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, लेकिन वो यही सोचता है कि यही मेरा कर्तव्य है, मुझे अभी बच्चों को पालना है, बच्चे के बच्चों को ध्यान देना है, और पता नहीं अगर उसका दुर्भाग्य हुआ तो उनके भी बच्चे हो जाएं, तब तक अगर जीवित रहे तो उनमें भी आ सकती। तो इसलिए वानप्रस्थ को और सन्यासी को तो भाव ही यही है कि अनासक्त होना चाहिए, उसको तो किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और ये अनासक्ति की पूर्णता होती है जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, वो अनासक्ति की पूर्णता है। तो ऐसे गृहस्थ और गृहमेदी भक्त का अंतर प्रभुपाद समझाते हैं। भगवान कपिल भी कहते हैं कि जो भी गृहस्थ जीवन में रहता है आसक्त हो जाता है, फिर वो भगवान की प्राप्ति नहीं करता, धर्म का पालन करता है केवल भोगों के लिए, कुछ नियमों का पालन करता है केवल भोगों के लिए। भगवद गीता के सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, कामस्तस्त हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन लोगों की बुद्धि काम के द्वारा हर ली गई है, काम वासनाओं ने हरण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं के पास जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। भगवान कपिल यहां यही कह रहे हैं कि वो फिर भगवान की भक्ति नहीं करते, अन्य देवताओं के पास जाते हैं। और ये अन्य देवताओं के पास जाना, भगवान कपिल कहते हैं ये तो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। हो सकता है व्यक्ति ऊंचे लोकों में जाने के लिए कई यज्ञ करे, प्रयास करे ऊंचे भोग का, लेकिन भगवान कपिल कहते हैं कि कोई चंद्रमा पर जा सकता है, 10,000 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन अंततः वापस आना पड़ता है, फिर इसी पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, भगवद गीता में भी भगवान इसी को कहते हैं। तो फिर क्या लाभ है? वो कहते हैं क्या ये जो लोक है ये इनका नाश नहीं होगा? क्या ब्रह्मा जी के लोक का नाश नहीं होगा? अगर व्यक्ति ब्रह्मा के लोक को भी प्राप्त करने का प्रयास करता है तो क्या उसका नाश नहीं होगा? ब्रह्मा जी का भी नाश होता है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु आती है। भगवान कपिल कहते हैं कि ये जो दो परार्ध, परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी का एक जीवन दो परार्धों में बटा होता है, पहला परार्ध 50 वर्ष का और दूसरा अन्य 50 वर्ष का, ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। तो भगवान कपिल कहते हैं ये दो परार्ध के बाद भी तो सब समाप्त हो जाता है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, सारे लोक। प्रलय अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का दिवस समाप्त होता है, तब भी प्रलय होता है, जितने भी नीचे के लोक हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी और सारे जीवों को लेकर गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन एक दूसरा महाप्रलय जिसे कहते हैं वो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है, जहां ब्रह्मा जी सोने के लिए नहीं जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है, जीवन समाप्त, सारा ब्रह्मांड जितने भी लोक हैं वो फिर से वापस उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो भगवान कपिल कहते हैं कि जिन लोकों में जाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोक भी समाप्त तो होने वाले, पुण्य समाप्त तो हो जाएंगे, आप आ जाएंगे। और मान लीजिए आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पुण्य के आधार पर नहीं है तो वो लोक भी समाप्त तो होने वाले। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के लिए कार्य करें, कृष्ण के लिए कार्य करें। भगवान कपिल कहते हैं कि फिर भक्ति करें, क्योंकि जब तक हम इन चीजों के लिए कार्य करते रहेंगे, इनमें फंसे रहेंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं उसके लिए भौतिक कर्तव्यों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सब कुछ त्याग दे। हाँ, जब उसकी ऐसी अवस्था हो, अर्थात जब उसने अपने सारे कर्तव्यों को कर लिया, उस समय तुरंत उसको घर को त्याग देना चाहिए। अन्यथा घर में बने रह सकते हैं, भगवान कपिल कहते हैं, लेकिन उसको तीन चीजों को कर लेना चाहिए। घर में बने रहते हुए या भौतिक कर्तव्यों को करते हुए अगर वो तीन रूप से भौतिक कर्तव्य करता है तो फिर वो मुक्ति के पथ पर जा सकता है। पहला, अनासक्त रहे। दूसरा, अपने को स्वामी नहीं माने, बिना स्वामित्व के भाव से अगर वो भौतिक कर्तव्यों को करता है और बिना मिथ्या अहंकार के। तो तीन चीजें, आसक्ति ना हो, स्वामित्व की भावना ना हो और अहंकार ना हो। इन तीनों से रहित रहकर अगर कोई अपने भौतिक कर्तव्य कर रहा है तो फिर वो मुक्ति के पथ पर है। फिर उसके भौतिक कर्तव्य उसकी मुक्ति के पथ में बाधा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भौतिक कर्तव्य करते हुए आसक्त है, अपने आप को सभी चीजों का स्वामी मानता है और अपने आप को अहंकार में डालता है या अहंकारी है, तो वो व्यक्ति केवल नरक या नाश के पथ पर है। इसलिए भौतिक कर्तव्यों को करते हुए भी हमें इन तीनों चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारी आसक्ति ना हो जाए, हम कहीं अपने आप को स्वामी नहीं मान लें, क्योंकि जो भी है, विशेष करके गृहस्थ जीवन में ये भाव बहुत जल्दी आता है। हम अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य संन्यास जीवन में कठिन होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए किसी स्वामित्व की भावना को आना कठिन है, क्योंकि उसका कुछ है नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कहने के लिए उसका भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं है, तो थोड़े बहुत स्वामित्व की भावना से दूर रहता है, फिर भी उसमें आ सकती है। लेकिन गृहस्थ जीवन में बहुत जल्दी आती है। हमने अपना घर बनाया, हमने कोई जमीन खरीदी, हमने कोई फैक्ट्री शुरू की, तो ये भाव बहुत जल्दी आ जाता है स्वामित्व का, कि मैं इसका मालिक हूं। व्यक्ति भूल जाता है कि सब कुछ कृष्ण का है। आपके उसके मालिक बनने से पहले भी कृष्ण मालिक थे, आपके मरने के बाद भी कृष्ण मालिक रहेंगे, इस बात को भूल जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में बहुत जल्दी ये स्वामित्व का भाव आता है। इसीलिए गृहस्थों को स्वामित्व के भाव से रहित रहकर भक्ति करनी चाहिए या भगवान की अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। आगे भगवान कपिल समझाते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिकता में पड़े हैं उनका क्या लाभ, उनको क्या गुण उनके अंदर या क्या उनको मिलता। जैसे उन्होंने अभी कहा कि भौतिकता में ना रहें, अनासक्त रहें इत्यादि, लेकिन फिर भी जो लोग पड़े रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। तो पहले विभाग में उन्होंने ये समझाया कि निष्काम कर्म करना चाहिए। आठवें श्लोक से आगे उन्होंने समझाया, पंद्रहवें श्लोक तक, कि जो लोग अन्य अन्य लोकों में जाने का प्रयास करते हैं या फिर जो लोग भगवान के विराट रूप की पूजा करते हैं हिरण्यगर्भ, तो वे लोग ब्रह्मा जी के लोक तक प्राप्त करते हैं, फिर उनको रुकना होता है, वो भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। और फिर उसके आगे वो वर्णन करते हैं सकाम कर्मियों के निंदा। अब इस भाग में 16वें श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक वो वर्णन करते हैं कि जो सकाम कर्मी, सकाम मतलब जो कुछ चाहते हैं, हम यहाँ मंदिर आ रहे हैं हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, हम कोई भक्ति कर रहे हैं हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, मंदिर में आके हमने हुंडी में 5 रुपये डाला हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, सकाम कर्मी। तो उनकी निंदा करते हैं, वो कहते हैं कि वो हमेशा चिंता में रहेगा। ये लक्षण है उस व्यक्ति के जो सकाम कर्मी है, जो कुछ प्राप्त करना चाहता है कोई पूजा इत्यादि करके, तो वो कहते हैं कि हमेशा चिंता में रहेगा। जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहण, आपने असत भौतिक चीजों को ग्रहण किया है, सदा चिंता में रहोगे। तो ये पहला लक्षण है उस व्यक्ति का जो बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत कुछ चाहता है इस जगत से। दूसरा लक्षण कि वो चिंता में तो रहेगा, और चिंता क्यों होगी, क्योंकि अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा। ये दूसरा लक्षण है उस व्यक्ति का जो बहुत ज्यादा भौतिक भोगों की कामना करता है, वो कभी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंद्रियों को वश में करने का सही मार्ग है भगवान की भक्ति। तो वो हमेशा गोदास रहेगा, गोस्वामी कभी नहीं बन पाएगा, सदैव गोदास। गो अर्थात इंद्रियां, दास यानी उनका दास। व्यक्ति सोचता है कि मैं इंद्रियों से आनंद ले रहा हूं, लेकिन दरअसल वो इंद्रियों का गुलाम बनता है, दास बनता है, ये उसकी स्थिति है। देखिए ये माया, व्यक्ति सोच रहा है मैं इंद्रियों का स्वामी हो गया, अपनी इंद्रियों से मैं भोग कर रहा हूं, आंखों से कुछ रूप देख रहा हूं, कानों से मधुर सुन रहा हूं, जिह्वा से स्वाद ले रहा हूं, यही मेरे जीवन का आनंद है। वो भूल जाता है कि ये पांचों इंद्रियां खींच रही हैं उसे, सुखी रहने नहीं दे रही हैं। जीवन भर उसको खोज करता रहता है, इन इंद्रियों की तृप्ति के लिए भागता रहता है जीवन भर। कितना मूर्ख है, समझ नहीं पाता कि इंद्रियों का दास बन के उनके पीछे भाग रहा है, स्वामी नहीं है। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी लोग अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकलते हैं, और ये सोचते हैं बड़े ऐसे चलते हैं कि कुत्ते का मैं स्वामी हूं, लेकिन कुत्ते के स्वामी नहीं है। कुत्ता जहां खड़ा होता है स्वामी को रुकना पड़ता है, कुत्ता अपना मलमूत्र त्यागने के लिए खड़ा है, स्वामी भी खड़ा है उसके साथ। और इतना ही नहीं, पाश्चात्य जगत में बहुत कड़े नियम हैं, गंदगी नहीं कर सकते। भारत में तो हमारे ठीक है, हम लोग बड़े सहनशील हैं या बड़े दयालु हैं, वहां पर बड़े कड़े नियम हैं। अगर आपके कुत्ते ने सड़क पर कुछ कर दिया तो आपको कई डॉलर्स का फाइन हो जाता है। तो इसीलिए जो लोग कुत्तों को घुमाने निकलते हैं वो ग्लव्स पहनकर रखते हैं, हाथ में जेब में हमेशा ग्लव्स रहता है प्लास्टिक का, जैसे ही कुत्ते ने कुछ किया तो फिर वो ग्लव्स निकाला, उसका साफ किया, थैले में डाला और चल दिया, और अपने आप को स्वामी मानते हैं। बताइए कौन स्वामी है, कुत्ता या मालिक? जो साफ कर रहा है उसको सारा कुछ साफ करना पड़ता है उसका। यहां पर भी हम लोग देखते हैं चल रहा है, कुत्ता रुक गया अपना कुछ काम करने के लिए, स्वामी को खड़ा रहना है, स्वामी चल नहीं सकता, कुत्ता भाग रहा है कहीं पीछे, वो भी भाग रहा है पीछे पीछे। इसी तरह हम लोग सोचते हैं, तो ये जो कुत्ते का मालिक है वो सोच रहा है कि वो स्वामी है, लेकिन कर क्या रहा है, कुत्ते के मलमूत्र को साफ कर रहा है। इसी तरह हम सोचते हैं कि हम गोस्वामी हैं, इंद्रियों के द्वारा हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा उसको नियंत्रित कर लिया जाता है, वो दास हो जाता है, गुलाम हो जाता है, भागता है जीवन भर इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए, इंद्रिय को तृप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये हमारी स्थिति है। और हम अपने आप को इंद्रियों का स्वामी मानते हैं, मेरी इंद्रियां हैं, मैं गोस्वामी हूं। तो इसलिए जो व्यक्ति हमेशा इन भौतिक चीजों में पड़ा है, चिंता में रहेगा। क्या चिंता? कि मुझे अपनी इंद्रियों को तुष्टि करनी है, तो हमेशा उसकी इंद्रियां अनियंत्रित रहेंगी और उस कारण से वो कभी भी कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएगा। भगवान कपिल कहते हैं कि जहां भी कृष्ण की कथा होगी वो सुन नहीं पाएगा कथा को, ऐसा आसक्त व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि एक घंटा कथा सुनने से अच्छा मैं जाकर थोड़ा पैसा कमा लेता, इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। यानी इंद्रियों का दास है, कथा सुनना भी चाहता है तो नहीं, उसको भागना पड़ता है। तो देखिए, इंद्रियों का स्वामी है या दास है? अगर व्यक्ति इंद्रियों का स्वामी हो तो अपनी इंद्रियों को वो निर्देश दे सकता है। स्वामी का कार्य होता है निर्देश देना, तो अगर उसकी इंद्रियां भाग रही हैं, उसको खींच रही हैं, वो निर्देश दे सकता है नहीं ये करना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा आसक्त होता है उसको कथा में कोई रुचि नहीं। भगवान की कथा मुक्त कर देने वाली, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम, सारे कल्मश को नाश करने वाली है, और ऐसी कथा में कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना आसक्त है इंद्रियों, इंद्रियां वश में नहीं है, सदा चिंता में है। इसीलिए कृष्ण के प्रति उसको कोई रुचि नहीं आती। और ऐसे लोगों के लिए भगवान कपिल एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ऐसे सारे लोग मल खाने वाले शूकर की तरह। भगवान कपिल कह रहे हैं, अपनी माता को समझा रहे हैं कि ऐसे सारे लोग जो कृष्ण भक्ति से विमुख हैं, कृष्ण की कथा सुनने में कोई रुचि नहीं है, केवल भोगों में रुचि है, इंद्रियां नियंत्रित नहीं है उनकी और हमेशा चिंता में रहते हैं, वो केवल मल खाने वाले शूकर के समान। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज के लिए भाग रहे हैं, भौतिक दृष्टि से जिस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से मल है, केवल मल। जैसे एक शूकर होता है, जिस चीज को मनुष्य त्याग देता है उसको वो खाता है, उसको ग्रहण करता है, उसको उस आनंद लेता है। इसी तरह जिस चीज को आत्म साक्षात्कारियों ने, भगवान के भक्तों ने जिस चीज को त्याग दिया है मल के रूप में, ऐसा वर्णन किया गया है, जिस समय परीक्षित महाराज अपना राज्य छोड़ रहे थे, अपनी सारी संपत्ति छोड़ रहे थे मलवत, उन्होंने कैसे त्यागा? जैसे व्यक्ति अपने शरीर से मल को त्याग देता है, कोई दुख नहीं होता व्यक्ति को मल त्यागने पर। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि मल त्याग कर पीछे घूमकर देखता है, हाय मेरे शरीर का हिस्सा चला गया। आशा करते हैं कोई ऐसा नहीं करता। मल त्यागने में किसी को दुख, उल्टा आनंद होता है। जब तक वो मल शरीर में रहता है, कष्ट देता है, त्याग देने के बाद व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, वैसे वो बहुत अच्छा आनंद है। एक बार एक राजा के कई समय बाद पुत्र हुआ, तो सब लोग आकर बहुत उसको बधाइयां दे रहे थे। उसका एक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था, मंत्री से उसने पूछा कि जानते हो आज मुझे क्या अनुभव हो रहा है, कितना आनंद अनुभव हो रहा है, इतने समय बाद पुत्र हुआ है, कई वर्षों के बाद, तो बताओ मेरा आनंद कैसा है। उसने कहा, महाराज आपका आनंद ऐसा है जैसा एक व्यक्ति को मल त्याग करने के बाद आता है। अब बताइए, इतना तो कोई भी राजा सुनकर दुखी हो गया, वो क्रोध में आ गया कि अरे किस क्या तुलना कर दी तुमने मेरे आनंद की, अरे मल त्याग करने का आनंद कौन सा बड़ा आनंद है, ये आनंद इतना बड़ा है, तो अगर इस बात को तुम साबित नहीं कर पाए तो गला काट दूंगा तुम्हारा। मंत्री ने कहा, साबित करके दिखाऊंगा। एक दिन राजा सो रहे हैं, सुबह हो गई, अचानक मंत्री आए, उठाया, राजा उठिए उठिए। राजा ने, क्या हुआ क्या हुआ? शत्रु आ गए, सैनिक आ गए, आक्रमण कर दिया, आपके सारे सेनापति भाग चुके हैं, आप अकेले सो रहे हैं, उठिए चलिए। तो राजा ने कहा, एक मिनट रुको मुझे जरा, अरे कुछ नहीं, मार डालेंगे, क्या फायदा है, चलो ठीक, भागे, चप्पल नहीं जूता नहीं, भाग रहे हैं। भागते 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 राजा को अब थोड़ा मल त्याग करने की इच्छा, सुबह का समय है, तो राजा ने मंत्री से कहा कहीं थोड़ा रुक जाते। मंत्री ने कहा पागल मर जाओगे, अरे कोई तीर चला देगा, कोई आ जाएंगे सैनिक, भागो। भाग रहे, भागे भागे, अब बोट में बैठ गए। राजा बोले बोट क्रॉस करना, बस करना है। अब राजा कह रहे नहीं थोड़ा रुक जाओ, मुझे जरा मल त्याग करना। अरे का पागल मर जाओगे, पीछे सैनिक आ रहे, बैठो बोट में, चल दी बोट। अब बोट पहुंच गई, थोड़ा सा बीच में पहुंची। राजा ने मंत्री को कहा बोट साइड में लगाओ। राजा ने कहा महाराज मर जाओगे। सैनिक बोले मर जाऊं चलेगा, साइड में लगाओ, अभी इस समय मुझे मल त्याग करना है। फिर पक्का राजा सोच लीजिए जीवन का सवाल है, बोले कुछ नहीं साइड में लगाओ। तो फिर उसने लगाया, राजा थोड़ा होकर आया, फिर राजा आया, उसको बड़ा आनंद। राजा का उसने पूछा महाराज कैसा लग रहा, बोले बहुत अच्छा, अब आनंद आए। तो बोले देखिए ये आनंद कौन सा है, उसके लिए आप अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए, आपको मालूम था पीछे शत्रु है, आप रुके नहीं, आप उसके लिए जीवन, उस आनंद के लिए, वो जो आनंद है मल त्याग करने का, उस आनंद के लिए आप अपना जीवन तक देने तैयार हो गए, इसीलिए मैंने कहा था यही आनंद आपको मिला है जब आपके पुत्र हुआ। तो जब बड़े बड़े भक्तों ने इन चीजों को छोड़ा, परीक्षित महाराज ने अपना इतना बड़ा राज्य संपत्ति को छोड़ा, मलवत, मलवत त्याग दिया। तो जिस भौतिक जगत को, जिस भौतिक प्रकृति को, जिस भौतिक भोग, जिस भौतिक आनंद को बड़े बड़े भक्तों ने, महान आचार्यों ने मलवत त्याग दिया है, हम उसमें आनंद लेते हैं। इसीलिए मल खाने वाले शूकर के समान है, इस शब्द का इस्तेमाल भगवान कपिल करते हैं कि वो सब केवल बस मल खाने वाले शूकर के समान है। और फिर 22वें श्लोक से लेकर आगे भक्ति का गुणगान करते हैं। तो उन्होंने निंदा कर दी, कह दिया कि कैसे लोग फंसे हुए हैं भौतिक भोगों में, मल खा रहे हैं, लेकिन इससे निकलने का मार्ग अब वो बताते हैं भक्ति। तो इसीलिए वो वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि भक्ति के क्या लक्षण हैं, भक्ति कैसे होती है और क्या प्राप्त होता है भक्ति से। अभी उन्होंने वर्णन किया भोग करने से क्या प्राप्त होता है, शुकर बनते हैं केवल मल खाने वाले, लेकिन अब वो वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति क्या है। वो कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमलों की पूजा करता है, उसका एक ही उद्देश्य है जीवन में, अपने सारे कार्य समर्पित करे भगवान को। और ऐसे भक्त के लिए फिर वो ये श्लोक में कहते हैं जो आज हमने पढ़ा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। कि वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार स्वतः आ जाता है। ऐसा ही श्लोक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें कहा गया वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। लेकिन यहां भगवान कपिल एक शब्द और जोड़ देते हैं, यद ब्रह्म दर्शनम। यद ब्रह्म दर्शनम मतलब उसको वैराग्य भी उत्पन्न होता है, ज्ञान भी उत्पन्न होता है और आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है, भगवान के दर्शन होते हैं, ब्रह्म दर्शनम, वो भगवान को जान पाता है। तो इसीलिए भक्ति करना महत्वपूर्ण है। भक्ति करते हुए व्यक्ति को अलग से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति का मार्ग क्या है, कृष्ण की कथा को सुनना, और कृष्ण की कथा को सुनते सुनते ज्ञान आ जाता है, जैसे आप सब लोग ज्ञानी हो गए हैं, भक्ति ज्ञान है। तो भक्ति करते करते अलग से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही वैराग्य को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। वैराग्य और ज्ञान भक्ति के दो पुत्र हैं, जहां भक्ति वहां ज्ञान और वैराग्य, और भक्ति करनी भी चाहिए वैराग्य से, अनासक्त रूप से। तो भगवान कपिल कहते हैं कि जहां भी भक्ति कोई करते हैं, और किसकी भक्ति, वासुदेवे भगवती भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, कैसे भक्ति करते हैं, भक्ति योग के द्वारा, उनकी पूजा कैसे करते हैं? भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम। बहुत जल्दी, आशु मतलब तुरंत, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान आ जाता है और ब्रह्म दर्शनम, आत्म साक्षात्कारी हो जाता है वो व्यक्ति। और इसीलिए भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। आगे वो बताते हैं कि भगवान की भक्ति करते करते वो व्यक्ति समत्व के भाव को प्राप्त करता है। समत्व मतलब सब चीजों में समान रहना। जैसे जो व्यक्ति भोग में लगा है, उसका जब भोग चला जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता है। कोई व्यक्ति परिवार से आ सकता है, कोई धन से आ सकता है, कोई प्रतिष्ठा से आ सकता है। जब परिवार का कोई चला जाता है दुखी हो जाता है, धन चला जाता है दुखी हो जाता है, मान प्रतिष्ठा चली जाती है बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन भक्त जो करता है भक्ति, उसके लिए क्या है? वो समान है। वो बहुत आनंद में बहुत प्रसन्न नहीं होता और जब बहुत दुख होता है तो वो बहुत दुखी नहीं होता। वो चीजों को जैसे हैं वैसे देखने के योग्य हो जाता है। अर्थात अगर उसके प्रियजन कोई चले जाते हैं तो वो देखता है कि ये भगवान की योजना है और एक जीव किसी दूसरे शरीर को धारण कर रहा है। हाँ, थोड़ा समय तक उसका समय मेरे साथ था, कर्तव्य मैंने किया, अब वो कहीं और आगे की अपनी यात्रा में चला गया, इसीलिए वो दुखी नहीं होता। धन चला जाता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, धन ये शायद और किसी व्यक्ति को मुझसे ज्यादा आवश्यकता होगी, भगवान ने उसको दे दिया, तो वो धन में भी दुखी नहीं होता। तो परिवार का व्यक्ति चला जाए, धन चला जाए, मान प्रतिष्ठा चली जाए, तो मान प्रतिष्ठा जाने पर भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो सोचता है कि ये सब तो शरीर के लिए है, ये जो मान मुझे दे रहे थे वो शरीर के लिए था। तो जो व्यक्ति जब मान मिले उसमें बहुत ज्यादा बहता नहीं है, वो व्यक्ति अपमान में भी अपने आप को संभाले रखता है। लेकिन जो व्यक्ति मान मिलने पर बहुत ज्यादा उसमें बह जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो वो व्यक्ति जब अपमान होता है तो उसको सहन नहीं कर पाता, आत्महत्या कर लेता। लेकिन जो भक्त है वो समान रहता है, उसमें उसको समत्व का भाव रहता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भक्ति, और कैसे करनी चाहिए भक्ति, इसको भी आगे वो वर्णन करते हैं कि भगवान की जो पूजा है उसको कैसे करनी चाहिए। वो कहते हैं पूर्ण श्रद्धा से। पहला लक्षण भक्त का होना चाहिए कि श्रद्धा हो, आदौ श्रद्धा। अगर हमें श्रद्धा नहीं है तो फिर हम साधु संग लेके करेंगे क्या? साधुओं के साथ में रहेंगे, श्रद्धा नहीं होगी। इसीलिए भगवान की भक्ति श्रद्धा से होनी चाहिए और श्रद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए। हमारी श्रद्धा शुरुआत में कोमल होती है। जैसे हम बीज लगाते हैं तो पौधा आता है, छोटा सा पौधा बड़ा कोमल होता है, जरा सी तेज हवा से भी टूट सकता है। लेकिन वही पौधा जब पेड़ बन जाता है तब फिर कुछ नहीं होता उसको। तो इसी तरह हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है, उसको बहुत दृढ़ बनाना चाहिए। दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति श्रद्धा से हो। दूसरा लक्षण अच्छी भक्ति का वो देते हैं भगवान कपिल, स्थिरता। भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े समय बड़ी तीव्रता से भक्ति की, ऐसी भक्ति कि लोगों ने कहा वाह वाह वाह, इनसे अच्छा तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता, दूसरे ही दिन 16 माला करना शुरू कर दिया, ये तो भगवान के धाम जाएंगे निश्चित। और फिर कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा बहुत तकलीफ हो गई तो सब बंद कर दिया। ये स्थिरता नहीं है। भक्ति को श्रद्धा से करना, भक्ति को स्थिरता से करना और भक्ति को अनासक्त रहकर करना, अर्थात भक्ति करते हुए भी अनासक्त, भक्ति के किसी लाभ की कामना न करना कि मैं भक्ति कर रहा हूं बस मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए, वो भी कामना नहीं करना, अनासक्त। भक्ति करनी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण चाहेंगे तो वो दर्शन देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। कृष्ण चाहेंगे तो सुखी रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो दुखी रखेंगे, कोई चिंता नहीं। इसको कहते हैं भक्ति की अनासक्ति, कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहे, कि जो भी भगवान दे रहे हैं तो हमें भक्ति में भी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। भक्ति भी हम किसी इच्छा को, किसी कामना को लेकर ना करें, भक्ति हम करें केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मेरा धर्म है स्वामी की सेवा करना, बस। अब फिर वो उसके लिए कुछ दे या ना दे, जैसे ब्रह्मचारी के लिए एक कर्तव्य कहा गया है कि उसको भिक्षा मांगने जाना चाहिए, जो भी भिक्षा मिले लाकर गुरु को देना चाहिए, चावल मिला, दाल मिला, जो भी मिला लाकर गुरु को दे देना चाहिए, फल मिला। अब गुरु अगर कहे कि ठीक है तुम इसमें से खा लो तो खाना चाहिए, नहीं तो भूखे रहना चाहिए। आजकल के ब्रह्मचारी तो बात अलग है, ये कलयुग बढ़ गया है, लेकिन वैसे नियम यही है कि ऐसे करना चाहिए। तो ये भक्ति का भाव होना चाहिए कि हम बहुत कष्ट करें, जैसे वो ब्रह्मचारी जाकर कष्ट करता है, भीख मांगता है, घर घर जाएगा, झोली फैलाएगा, भिक्षाम दे ही, और वो भी नियम है कि कुछ ही घरों में जाना चाहिए, तीन घरों में जाए, भिक्षाम दे ही, तीन बार कहे नहीं हो तो आगे जाए, तो सारा कष्ट वो ब्रह्मचारी लेगा। किसके लिए? दक्षिणा इकट्ठा करने के लिए। कोई चावल दे देगा, कोई हो सकता है कोई धक्का मार के भगा दे। एक बार एक भिखारी एक घर पर आया भीख मांगने के लिए, उसने कहा चले जाओ यहां से, कुछ नहीं। अगले दिन फिर आया, फिर उसने कहा चले जाओ, फिर आया, उसको बड़ा गुस्सा आया। वो जो महिला थी, वो माता थी, वो कुछ कुकिंग कर रही थी, वहां पर राख पड़ी थी कोयले की, उसने राख दे दी, उठा ले ले जाओ, सुनते नहीं हो, मना किया, राख ले जाओ। तो उसने बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल फिर आऊंगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ स्त्री को, कहने लगी कैसे व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें उठाकर राख दे दी, फिर भी तुम कह रहे हो कि कल आओगे। तो उसने कहा देवी दो दिन से तो आप कुछ नहीं दे रही थी, कम से कम आज राख दी है, कल आप अन्न भी दे दोगे, इसीलिए कल आऊंगा। तो कभी कभी ब्रह्मचारी इतना कष्ट सहन करे धन लाने के लिए, कुछ लाने के लिए, लेकिन ला के क्या करना है, गुरु को दे देना। बताइए सारा कष्ट उसको, जाएगा धूप में, ऑफकोर्स कारवार की तो धूप भी ऐसी है, तो जाएगा धूप में बाहर, बुझोली फैलाएगा, कोई कोई राख देगा, कुछ इतनी मेहनत से इकट्ठा करके लाए, और क्या करना है, गुरु को दे देना। और अगर गुरु कहे तो खाए, नहीं तो भूखा रहे। ब्रह्मचारी को ये नहीं सोचना लाया कौन, मैं लाया ना, फिर ठीक है गुरु भी खा ले थोड़ा, लेकिन बाकी तो इधर आना चाहिए। नहीं, यही भाव हमारा भक्ति में होना चाहिए, हम कष्ट लें कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, मंदिर के लिए, भक्तों के लिए, लेकिन अपने लिए भाव नहीं होना चाहिए। अगर कृष्ण दे दे कोई सुविधा स्वीकार्य है, नहीं दे तो जैसे हैं वैसे रहे, ये भक्ति है। इसीलिए भक्ति करते हुए भी हमें भक्तों को कामना नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए जान लीजिए भक्ति पूर्ण श्रद्धा से हो। भक्ति दूसरा क्या बताया आपको, श्रद्धा के अलावा स्थिरता हो, इधर उधर नहीं जाएं, आज इस मंदिर में कल उस मंदिर में, आज ये भक्ति, आज गणपति, आज दुर्गा, स्थिरता रहे भक्ति में, हिले नहीं, स्थिर भाव से भक्ति। और तीसरा अनासक्त हो, उसमें भी कोई कामना नहीं। जब ऐसी भक्ति हम करेंगे तब हम जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अंत में वो वर्णन करते हैं कि मैंने आपको ये ज्ञान दे दिया, अपनी माता को कहते हैं कि आपने जो भी पूछा था मैंने ज्ञान बता दिया आपको, तो ये किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए वो बताते हैं वो। तो बहुत सुंदर आखिरी के तीन चार श्लोक जिनको पढ़ना चाहेंगे अनुवाद को, जिसमें भगवान कपिल कहते हैं कि किसको ये ज्ञान देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है। पहले उन्होंने अपनी माता को कहा कि जो मैंने अब समझा दिया, ये पूरा ज्ञान आपको दे दिया, इससे आप भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान, ये उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं। ईर्ष्यालु यानी जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, अविनीत हैं। अविनीत मतलब जो नम्र नहीं है। देखिए, सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, मतलब हमको अगर ये ज्ञान समझना है तो ये चीजें करनी है। तो भगवान कपिल कहते हैं उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, मतलब हमें द्वेष को त्यागना है, जो अविनीत हैं। अविनीत यानी जो नम्र नहीं है, अर्थात हमें नम्रता को लाना है, या दुराचारी है, गलत कार्य करते हैं। ना ही यह उपदेश दंभियों, दंभियों ने अहंकारी, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। आज भी अगर आपके हृदय में अपनी भौतिक संपदा का गर्व है, भौतिक आनंद का, भौतिक धन का, भौतिक प्रतिष्ठा मान का, तो आपके लिए ज्ञान नहीं है, भगवान कपिल कहते हैं। और आगे वो कहते हैं, यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं, लोभी लोगों के लिए भी नहीं है, और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्याधिक आसक्त है। जो बहुत ज्यादा आसक्त है उसको भी ज्ञान देके फायदा नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुनने के बाद जाकर फिर वही करने वाले हैं। ना ही अभक्तों, अभक्तों को भी नहीं देना चाहिए जो भक्त नहीं है, और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। तो ना भक्तों को, और ना ऐसे भक्तों को जो भगवान के भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए ज्ञान। तो देना नहीं चाहिए मतलब उनको समझ में आएगा नहीं, उनके लिए ये है नहीं, क्योंकि उनके हृदय ईर्ष्या से भरा हुआ है। तो जहां ईर्ष्या भरी है वहां ये ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा भगवान कपिल कह रहे हैं। और आखिर के दो श्लोकों में वो कहते हैं, किसको ये उपदेश देना चाहिए? ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला, श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो, ऐसे भक्त को ज्ञान देना चाहिए। तो देखिए, हर एक को ये ज्ञान नहीं देना है, तो हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। और फिर वो आगे कहते हैं, गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं। कितने सारे लक्षण गुण दिए जा रहे हैं भगवान के भक्तों के। हम लोगों का दुर्भाग्य है, हमें बहुत जल्दी ये खत्म करना है, समय हो गया है, लेकिन इतना अच्छा चर्चा। जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, पूर्ण शुद्ध चित्त है, और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है, मतलब कृष्ण भक्ति के बाहर जो कुछ भी है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, कहते हैं, जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, भगवान कह रहे हैं, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो ये आशीर्वाद उन्होंने दिया, श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान करें, उनके विषय में सुने और कीर्तन करें, तो निश्चित भगवान को प्राप्त करेंगे।